पहला कदम शैतानी नुत्फा। यहूदियों के पास कभी भी कोई अपना मुल्क नहीं था और वो आवारा ही रहे हैं। हॉलैंड का एक रिहायशी कानूनी वकील थियोडोर हर्ज़ल, उससे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। उसने 1896 में एक किताब मुल्क यहूद में लिखा कि हमें लाजिमन यहूदियों के लिए एक मुस्तकिल हुकूमत तशकील देना होगी। उसने 29 ता 31 अगस्त की तारीखों में अगले साल 300 बड़े यहूदियों को स्विट्जरलैंड में जमा किया ताकि किस तरह एक यहूदी हुकूमत को बनाया जाए के बारे में बहसो गुफ्तगु करें। मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बातचीत हुई लेकिन बिलाखिर फलस्तीन पर सबका इत्तफाक हो गया, और क्योंकि फलस्तीन में यहूदी मुकदसात भी मौजूद हैं, जो अवामी फरेब दही के लिए एक बेहतरीन बहाना करार पाए। हर्ज़ल ने हुकूमत उस्मानी के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को बहुत से तहाइफ इरसाल किए और साथ ही यूरोपीय यहूदियों के फलस्तीन आने की इजाजत मांगी, जिसे बादशाह ने कबूल नहीं किया। लेकिन हर्ज़ल ने अमरीकी और यूरोपीय यहूदियों की मदद से एक कंपनी बनाई जो फलस्तीन में जाकर रहने वाले यहूदियों की माली मदद किया करती थी। दूसरा कदम, चोर साथी। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। इन हालात में यहूदियों ने जंग को बहाना बनाकर बेशुमार यहूदियों को फलस्तीन मुहाजरत करवाई। जंग के बाद सल्तनत उस्मानी कमजोर पड़ गई और 1916 में साइज पीको करारदाद के मुताबिक फ्रांस और बरतानिया के हिस्से में तकसीम हो गई। फलस्तीन बरतानिया के हिस्से में आया और बरतानवी फौजी वहां काबिज हो गए। बरतानवी वजीर खारजा की कोशिशों से 2 नवंबर 1917 को एक यहूदी बेनाम रिचर्ड को खत लिखा और कहा कि बरतानवी हुकूमत यहूदियों के लिए फलस्तीन को उनके मुल्क बनाने की हिमायत करती है। साथ ही अमरीकी सदर विल्सन ने भी खत की हिमायत कर दी। यहूदियों के अच्छे दिनों का आगाज हुआ। पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा यहूदियों की फलस्तीन की तरफ मुहाजरत शुरू हो गई। अमलाक और जरई अराजी को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया गया। शुरू में पैसे से और अगर कोई मुकावमत करता तो बरतानवी फौज की मदद से जबरदस्ती हासिल कर ली जाती। 25 नवंबर 1920 पहली जंग अजीम के फातहीन ने सान रेमो इटली में ऐलान किया कि यहूदियों को आजाद होना चाहिए और फलस्तीन में उनका अपना मुल्क होना चाहिए। इस करारदाद को अक़्वामे मुत्तहिदा ने भी फौरन लाज़िमुल इजरा करार दे दिया और एक यहूदी बेनाम सामाइल को इस काम पर मामूर कर दिया। 1920 में चर्चिल बरतानवी जंग का फाते खुद शरीफ चला गया और सफेद कागज नामी इस्तलाह को बयान करके कहा, हमें हर हालत में कबूल करना होगा कि यहूदी फलस्तीन में आए और अपना अलग और मुस्तकिल मुल्क बनाए। तीसरा कदम, शैतान के निशान। 1930 के शुरू में यहूदी मुखालिफ नाजियों ने कुदरत हासिल की। यहूदियों की फलस्तीन में महाजरत के सिलसिले में बेपनाह इजाफा हो गया। इन्हीं सालों में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और 6 साल मुसलसल जारी रही। जंग के फौरन बाद एक नया खेल शुरू कर दिया गया, होलोकॉस्ट। इज्तमाई तौर पर यहूदियों के कत्लेआम की झूठी कहानियां जो एक नया बहाना बन गया उन यहूदियों के लिए जो अभी तक यूरोप से फलस्तीन ना जा सके थे। देखते ही देखते फलस्तीन में यहूदियों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर गई। इस दफा बरतानिया की जगह वो मुल्क यहूदियों की मदद कर रहा था जिसने जंग के दौरान यहूदियों की मदद से नई ताकत और हैबत हासिल कर ली थी, यानी अमरीका। चौथा कदम, जमीन पर कब्जा। 14 मई 1948, सब कुछ पहले से तय शुदा था। सुबह बरतानिया ने ऐलान किया, हमारा फलस्तीन पर कानूनी हाकिमियत का वक्त खत्म हो गया है। और इसी दिन वक्त जोहर से पहले यहूदियों ने इसराइल के नाम से अपने मुल्क का ऐलान कर दिया। इसी दिन जोहर के बाद अक़्वामे मुत्तहिदा में इस पर वोट डाला गया और सिर्फ चंद ही मिनटों में वोटिंग मुकम्मल हो गई और इसराइल को कानूनी हैसियत दे दी गई। इसके थोड़ी देर बाद अक़्वामे मुत्तहिदा ने बाकायदा ऐलान किया कि सरजमीन फलस्तीन पर एक और मुल्क इसराइल के वजूद को कबूल कर लिया गया है। ठीक 3 मिनट बाद अमरीका اور 8 منٹ بعد سوویت یونین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اسی طرح فلسطینیوں سے پوچھے بغیر انہی کی سرزمین پر ایک اور ملک بنا دیا گیا اور 21,000 کلومیٹر فلسطینی سرزمین پر یہودی قابض ہو گئے۔ دوسرے دن مصر، اردن، شام، سعودیہ، عراق اور لبنانی فوجوں نے حملہ کر دیا اور کافی زیادہ حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن اچانک اقوام متحدہ نے سازش کار لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے 20 روزہ جنگ بندی کروا دی اور اس جنگ بندی کے دوران اسرائیل کو بھرپور تسلیحاتی مدد حاصل ہو گئی تھی، جس کی بنا پر اسرائیل نے 20 دن بعد اچانک عربی فوجوں کو شکست سے دوچار کر دیا اور پوری سرزمین فلسطین سوائے کرانہ باختری اور غزہ قابض ہو گیا، یعنی در حقیقت فلسطین نامی ملک ختم ہو گیا اور لاکھوں فلسطینی اپنے ہی گھروں سے بے دخل کر دیے گئے۔ 5واں قدم، زخم زیتون۔ گزشتہ 1968 میں صاف کی کوششوں سے عربی حکومتوں نے اسرائیل پر حملے کا ارادہ کیا کہ جس کے جواب میں اسرائیل نے پہلے پہر حملہ کر کے عربوں کو شکست دے دی اور یہودیوں کے ہاتھوں غصب شدہ فلسطین زمین 3 برابر ہو گئی۔ بلاخر امریکی اور یہودی دباؤ کے نتیجے میں عرب اور صاف عہد وفا سے پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے پہلے مصر، انور سادات نے 1978 کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد صاف نے 1992 میڈریڈ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ دنیا نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو قبول کر لیا، لیکن پھر وقت بیداری آن پہنچا تھا اور آج تک اس سرزمین کے مسلمانوں نے غاصب صہیونیوں سے مقابلے کو جاری رکھا ہوا ہے اور اس مقاومت اور بیداری کے سامنے حقوق بشر کے نام لیوا آنکھیں بند کیے سر جھکائے کھڑے ہیں اور غاصب صہیونی حکومت کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ شاباش دیتے ہیں، لیکن مقاومت جاری ہے اور فلسطین آج بھی اسلام کا نہ ختم ہونے والا حصہ ہے۔